जय राधमाधव कुंज बिहारे,
यह प्रवचन श्रीला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जी की कथा करते हुए 21 मार्च 2016 को इस्कॉन खारगर में दिया गया।
गोपी जन बाला भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। तो मुझे सूचना मिली थी कि आज से गौर कथा शुरू होने जा रही है। परसों है चैतन्य महाप्रभु जी का आविर्भाव तिथि, तो चैतन्य महाप्रभु से संबंधित है एक बड़े प्रसिद्ध भक्त माधवेंद्रपुरी, जो कि उनके गुरु ईश्वरपुरी गुरु थे। और कल माधवेंद्रपुरी का तिरुभाव तिथि भी था। सबको सुनाई दे रहा है पीछे? चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान हैं और प्रकट हुए थे भक्त के रूप में परितों का उद्धार करने के लिए। और नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं सारे अवतारों में सबसे दयालु अवतार थे। चैतन्य महाप्रभु जी के गुरु का नाम था ईश्वरपुरी और उनके गुरु का नाम था, दूसरे शब्दों में माधवेंद्रपुरी चैतन्य महाप्रभु जी के परम गुरु थे। तो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते करते रेमुना में पहुंचे। रेमुना में एक बड़ा प्राचीन मंदिर है राधा गोपीनाथ का, और कहा जाता है कि राधा गोपीनाथ की जो मूर्तियां हैं वो स्वयं भगवान राम ने बनाई थी। भगवान राम बता रहे थे सीता जी से कि मैं द्वारपा युग में प्रकट होऊंगा इस रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु राधा गोपीनाथ मूर्तियों के सामने नाच रहे थे। उनका नाम हो गया था राधा खिचोड़ गोपीनाथ। और जब वो नाच रहे थे तो भगवान का एक हार उनके गले में गिर गया। तो जब यह हार गिरा तो उन्होंने इसे बड़ा शुभ लक्षण स्वीकार किया। और फिर चैतन्य महाप्रभु को याद आई कथा जो कि उनके गुरु महाराज ईश्वरपुरी ने आए वो, फिर उन्हें याद आया कथा, ठीक है, जो कि उनके गुरु महाराज ईश्वरपुरी ने सुनाई थी। वो कथा इस प्रकार से है। माधवेंद्रपुरी बहुत ऊंचे कोटि के भक्त थे। चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और ध्यान से माधवेंद्रपुरी की कथा सुनेगा उसे क्या प्राप्त होगा? भगवत प्रेम। तो आप माधवेंद्रपुरी की कथा सुनने में ही आपको भगवत प्रेम प्राप्त हो सकता है। तो माधवेंद्रपुरी 24 घंटे भगवान के नामों में जुड़े रहते थे और कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। अगर किसी ने कुछ खाने के लिए दे दिया तो खाते थे, नहीं तो भूखा रहते थे। एक दिन महावृंद पुरी ने गोवर्धन की परिक्रम की थी, और गोवर्धन परिक्रम करने के पश्चात वो थके हुए थे और गोविंद कुंड में एक पेड़ में बैठे हुए थे, थोड़ा विश्राम कर रहे थे। अगर आप गोवर्धन की परिक्रम करो तो आप जब गोविंद कुंड में पहुंचते हो तो पांडा जी कहते होंगे ये है महादेवपुरी की बैठक। तो महादेवपुरी विश्राम कर रहे थे तो एक बहुत ही खूबसूरत ग्वाला वहाँ पहुँच गया मटके में दूध लेकर, और उस ग्वाले ने कहा हे महादेवपुरी तो मुझे भूखे न जड़ाते हो, मैं तुम्हारे लिए दूध लाया हूँ पियो, मैं गायों की देखभाल करके लौटता हूँ मटका लेने के लिए। महादेवपुरी ने पूछा आपको कैसे पता कि मैं भूखा हूँ तो थका हुआ हूँ। तो ग्वाले ने कहा औरतें जा रही थी कुएं में पानी निकालने के लिए, मैं आपको देखकर पहचान लिया कि आप भूखे हो, और मेरे गांव में किसी को अधिकार नहीं है भूखा रहने का, तो पियो ये दूध और मैं लौटता हूँ मटका लेने के लिए। महादेवपुरी बड़े प्रभावित हो गए थे ये खूबसूरत लड़के को देखकर, कभी उन्होंने इतिहास में इतना खूबसूरत युवक नहीं देखा था, और इतनी मधुर कंठ कभी उन्होंने सुनी नहीं थी। महादेवपुरी ने दूध पी लिया और राह देख रहे थे कब लौटेगा वो ग्वाला मटका लेने के लिए। ग्वाला तो लौटा ही नहीं, और महादेवपुरी को हल्की सी नींद आ गई। नींद आने पर सपना आया, और सपने में भगवान ने कहा, उसी ग्वाले ने कहा महादेवपुरी मैं बड़ा प्रभावित हूँ तुम्हारी सेवा से, और मैं तुम्हें एक खास आदेश देना चाहता हूँ। मेरी एक मूर्ति है जिसकी स्थापना वज्र ने की थी 5000 साल पूर्व, और जिसे दबा दिया था झाड़ियों के नीचे मुसलमानों के अत्याचार से बचने के लिए। जो मुसलमानों का राजा था लगभग 500-700 साल पहले, तो कई बार वृंदावन की मूर्तियों को नष्ट कर दिया था, और कई मूर्तियों को उठाकर जयपुर ले गए। इसी उनका जयपुर का एक और नाम है गुप्त वृंदावन, और कई मूर्तियों को छुपा दिया था दबाकर। तो पुजारी ने क्या किया, एक गोपाल की मूर्ति है, मूर्ति का नाम है गोपाल, उसे छुपा कर भाग गया अभी जान बचाने के लिए। जब महादेवपुरी ने उसी ग्वाले का दर्शन लिया जिन्होंने उनको दूध दिया था, तो वो शर्मिंदा हो गए, क्यों, मैंने भगवान से सेवा ले ली है, भगवान के हाथों से मैंने दूध पी लिया है। जो ऊंचे कोटि का भक्त है वो भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहता, केवल देना चाहता है। ऐसे तो भगवान कहते हैं 4 परिस्थितियों में लोग मेरी शरण में आते हैं, एक है जिसे धन चाहिए, दूसरा है रोगी पीड़ित, तीसरा है जिज्ञासु, चौथा है श्रेणी का भक्त है जो ज्ञान के आधार पर भगवान की शरण में आता है। चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? जो ज्ञान के आधार पर आता है। तो माधवपुरी शर्मिंदा हो गए कि उन्होंने भगवान से सेवा ले ली है और पछता रहे थे। खैर, उन्होंने अगले दिन सुबह गांव के लोगों को बुलाया और कहा, मुझे भगवान का सपना आया था जिसमें भगवान ने कहा कि इन झाड़ियों के नीचे क्या है, भगवान की एक मूर्ति है जिसे मुसलमानों के हथियार से बचाने के लिए छुपा दिया था। चलो अब खोद कर देखते हैं सपना सच था या झूठ था। गांव वालों ने कहा चलो। तो कैंची लेकर मैंने झाड़ियों को काटा, फिर खोदने लगे उसी स्थान पर जिस स्थान का वर्णन भगवान ने किया था। भगवान माधवेन्द्रपुरी की उंगली को पकड़कर ले गए थे सपने में, इस स्थान में गोपाल की मूर्ति दबी हुई है। तो जब वो खोदने लगे, खोदने पर देखा सपना सच था, गोपाल की एक बहुत भारी मूर्ति, इतनी भारी कि कोई पहलवान भी उसे उठा नहीं पाया, वहां थी। तो क्योंकि वो मूर्ति इतनी भारी थी, सब भक्तों ने मिलकर मूर्ति को बाहर निकाला, पानी से स्नान करवाया और मिट्टी विट्टी निकाली, क्योंकि कई सालों से महीनों से मूर्ति दबी हुई थी पृथ्वी के नीचे। और दो दिन के अंदर माधवपुरी ने मूर्ति स्थापना की योजना बना दी। हम लोग जब इस्कॉन में मंदिर खोलते हैं हमें महीने महीने लग जाते हैं तैयारी करने में। माधवपुरी ने दो दिन में सारा प्रबंध कर दिया। एक बड़ा पत्थर लेकर भगवान की पीठ पर रख दिया, सिंहासन बनाया, और माधवपुरी ने ब्रज के सारे भक्तों को जोड़ा मूर्ति स्थापना में। 900 बाल्टियों में पानी लेकर आए गोविंद कुंड से, और पंचगव्य के साथ भगवान को स्नान करवाया, पहले तेल से भगवान की मालिश की, फिर पंचगव्य लगाया, फिर स्नान करवाया। दो दिन में सब तैयारी हो गई। और माधवेन्द्रपुरी ने सारे ब्रिजवासियों को जोड़ा सेवा में। सारे ब्रिजवासी कुछ ना कुछ भेंट लेकर आया। प्राचीन समय में लोगों की संपत्ति मापी जाती थी ये देखकर कि कितनी धरती है और कितनी गायें हैं। आजकल हम देखते हैं कौन सी मोटर चला रहा है, कौन से ब्रांड के कपड़े पहनता है, कौन सी जगह किस इलाके में मकान है, और अगर ऊंचे इलाके में हो तो हम उसे रईस मानते हैं। तो प्राचीन समय में हर व्यक्ति के पास खेती थी और गायें थी। तो माधवपुरी ने सबको जोड़ा और फिर से अन्नकूट उत्सव, जो कि भगवान कृष्ण के समय हुआ था, उसकी स्थापना की। आप भगवान की गोवर्धन लीला से परिचित हो, धन महाराज की साथ थे, यज्ञ कर रहे थे यज्ञ की तैयारी, और भगवान की इच्छा नहीं थी इंद्र यज्ञ होए, क्योंकि इंद्र जी में कभी कभी घमंड भी आ जाता है। तो भगवान ने कहा, भगवान ने पिता से पूछा, ये क्या तैयारी कर रहे हो पिताजी? पिता ने जवाब नहीं दिया। पिता ने सोचा, मेरा छोटा बेटा क्या समझेगा इंद्र यज्ञ का क्या महत्व। फिर उन्होंने फिर से पूछा और कहा, मित्रों से बच्चों से कुछ छुपाया नहीं जाता, बताओ क्या यज्ञ कर रहे हो? और नंद महाराज ने कहा, बेटा हम किसान हैं, हमारी सफलता निर्भर है इंद्र की कृपा के ऊपर। अगर जल नहीं आएगा, बारिश नहीं आएगी, तो हमारी खेती में अन्न नहीं उगेगा। तो ये यज्ञ किया कर रहे हैं किसके लिए? इंद्र की खुशी के लिए। भगवान ने कहा, इसकी क्या आवश्यकता? जो आपके कर्मों के अनुसार जो सुख दुख मिलना है आपको तो मिलेगा ही, यज्ञ का क्या महत्व? खैर, बेटे के कहने पर पिता ने वही इंद्र यज्ञ कि जो यज्ञ जो सुविधाएं तैयार की थी इंद्र जी के चरणों में अर्पण करने के लिए, क्या क्या भाग उन्हें गोवर्धन को खिला दिया। गोवर्धन बने भगवान सब अन्न खा लिया, भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। नेत्रों से खाते हैं, कानों से सुनते हैं। आज दिन हम हमारे इस कर्मंडलों में 6 आरती होती हैं दिन में, भगवान को भोग लगाया जाता है। जगन्नाथपुरी में भोग लगता है कितनी बार? कितनी बार? 56 बार भगवान खा लेते हैं। तो माधनपुरी के प्रयास से गोपाल विग्रह की स्थापना हो गई, अभिषेक भी हो गया, और रोज अलग अलग खानदान के कारण के सहयोग से अनुकूल उत्सव हो रहा था। और माधवेन्द्रपुरी खुद मूर्तियों की देखभाल करते थे, सारी दिन में 6 पुजारी 6 आरती खुद करते थे, और भगवान को भोग भी तैयार करते थे, और रात को भगवान को सुलाने के बाद, जैसे अभी आपके विग्रह बंद हो गए हैं छुप, अभी उनको उनके वस्त्र बदले जा रहे हैं, और मंदिर के उच्चारण से उन्हें सुलाया जाएगा, फिर सुबह 3:30 बजे जगाया जाएगा। तो माधवेन्द्रपुरी खुद भगवान की सारी आरतियां करते थे, और फिर रात को उनको सुलाने के बाद खुद खाते थे। सारा दिन कुछ नहीं खाते थे, सारा दिन लगे रहते थे माधवेन्द्रपुरी गोपाल की सेवा में। रात को भगवान को खुद सुलाते थे, खुद सुलाने के बाद थोड़ा सा दूध पीते थे, बस ये थी इनकी इनकी खुराक, और सारा दिन कुछ नहीं। तो इस प्रकार से माधवेन्द्रपुरी ने 2 साल भगवान की देखभाल की। 2 साल के बाद माधवेन्द्रपुरी को फिर से एक सपना आया। सपने में भगवान ने कहा, हे माधवेन्द्रपुरी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही खुश हूं, पर मुझे अभी भी यहां गर्मी लग रही है, मैं चाहता हूं तो मेरे लिए चंदन लेकर आओ, चंदन मेरे शरीर में लगाओ। गर्मी के मौसम में हम चंदन लगाते हैं भगवान को, पर सर्दियों में नहीं लगाते, क्योंकि चंदन के द्वारा भगवान के शरीर को ठंडा किया जाता है। तो कई बंगाली ब्राह्मण आए थे, महानंदपुरी ने उन्हें सुविधा दी, शिक्षा दी गोपाल की विग्रह की पूजा कैसे किया जाए, और उनको जिम्मेदारी देकर महानंदपुरी चल पड़े। कहाँ जाने के लिए? जगन्नाथपुरी, चंदन लाने के लिए। हजारों मीलों की यात्रा की महानंदपुरी ने, पैदल चले गो। महानंदपुरी ने गोपाल विग्रह की स्थापना की गोदान पर्वत की चोटी पर, और महानंदपुरी गोदान पर्वत की चोटी पर स्थापना की और पैदल चले कहाँ जाने के लिए? जगन्नाथपुरी पहुँचने के लिए। रास्ते में वो पहुँचे यमुना में, और राधा गोपीनाथ के मंदिर में, ये वही मंदिर है जहाँ चैतन्य महाप्रभु नाच रहे थे भक्तों के साथ, और भगवान का हार उनके गले से गिर कर उनके हाथों में गिर गया। तो जब महानंदपुरी रेवन्यू में पहुंचे तो उन्होंने सोचा, यहाँ तो प्राचीन समय से भगवान की सेवा हो रही है, मुझे पता लगाने दो कैसे भोग लगाते हैं भगवान को, क्या बनाते हैं, क्या टेस्ट है। और खास करके उस मंदिर में जो खीर खिलाई जाती थी भगवान को, उसका नाम था, क्या था नाम? अमृत केरी। कहा जाता है कि जो खीर जो बनाई जाती थी भगवान के लिए, उसका ऐसा टेस्ट था जैसे खीर स्वर्ग से बनकर आई है। तो महानंदपुरी ने सोचा कि अगर मुझे यह शिक्षा मिल जाए कि भगवान का भोग कैसे बनता है और भगवान ये खीर का टेस्ट क्या है, तो मैं फिर लौट कर अपने भगवान के लिए, गोपाल के लिए इसी प्रकार के भोग तैयार करूं। पर महानंदपुरी की जो इच्छा प्रकट हुई, जब भगवान का भोग लग रहा था, शास्त्र के अनुसार ये है ज्ञान, जब भोग बना रहे हो आपको सोचना चाहिए ये भोग बन रहा है भगवान के लिए, और जब भगवान खा लेते हैं फिर हम बांटते हैं और खाते हैं। ये नहीं कि भगवान का भोग बन रहा है और भगवान का भोग चल रहा है, हम सोचे कि हमने चखना है। तो महानंदपुरी शर्मिंदा हो गए कि उनके मन में ये भाव जो प्रकट हुआ, भोग चखने खीर चखने का, राधा किशोर गोपीनाथ मंदिर में रोज शाम को भगवान को 12 कप खीर के भोग के रूप में लगाए जाते थे। तो महानंदपुरी शर्मिंदा हुए कि उनकी इच्छा थी कि उनको खीर मिले चखने के लिए, और इच्छा प्रकट हुई जबकि भोग लग रहा था। तो महानंदपुरी भोग चखे बिना बाजार में चले गए हाई नाम करने के लिए। भगवान जो है भक्तों की इच्छाओं को समझते हैं। ईश्वर सर्वभूता नाम हे देश रजुना तिष्ठति, भगवान हृदय में विराजमान है। भगवान कहते हैं सर्वस्य चाह हृदय सन्निविष्टो माता स्मृति ज्ञानम अपमानम चा, कि मेरे कारण स्मरण की शक्ति आती है, मेरे कारण भूलने की शक्ति आती है। जो भक्त बनना चाहते हैं उन्हें भी भगवान प्रेरणा देते हैं। तो भगवान को भूलना चाहे वो योग्यता भी भगवान ही देते हैं। ये निर्भर रहती है हमारी इच्छा के अनुसार। भगवान जबरदस्ती किसी को नहीं जोड़ते भक्ति में। तो माधव तो पूरी चले गए बाजार में जप करने के लिए। भगवान ने क्या किया, भगवान ने खीर का प्याला चुरा कर पर्दे के पीछे छुपा दिया कि कोई देख नहीं पाए। जैसे यहाँ आपके ऑल्टर में दरवाजा है, दरवाजा के पीछे पर्दे हैं, पर्दे के पीछे भगवान है। तो भगवान ने पर्दे के पीछे छुपा दिया कि कोई देखे नहीं। और अगले दिन सुबह पुजारी को सपने में कहा कि मैंने माधवेंद्रपुरी की खुशी के लिए एक खीर का प्याला चुरा कर छुपा दिया है, तुम इस खीर के प्याले को लेकर बाजार में जाओ, वहाँ माधवेंद्रपुरी नाम का भक्त भजन कर रहा है, ये खीर का प्याला मैंने उसके लिए चुराया है। पुजारी को सपने में विश्वास नहीं हुआ। पुजारी ने कहा भगवान ने खीर का प्याला चुराया है अपने भक्त माधवेंद्रपुरी के लिए। कौन है ये भाग्यशाली भक्त माधवेंद्रपुरी? उनका माधवेंद्रपुरी से कोई परिचय नहीं था। खैर पुजारी जागे, मंत्रों द्वारा भगवान को जगाया और पर्दे के पीछे गए देखने के लिए सपना सच था या झूठ। और देखा सचमुच पर्दे के पीछे खीर का प्याला था। तो पुजारी कहने लगे कौन है ये भाग्यशाली भक्त जिसकी खुशी के लिए भगवान ने खीर का प्याला चुराया? अगर आपके लिए भगवान खीर का प्याला छुपा दें तो आपका पुजारी कहे ये आपके लिए चुराया था भगवान ने, आपको कहे हाँ भगवान ने मेरे लिए किया। तो पुजारी गया बाजार में, यहाँ कोई माधवेंद्रपुरी नाम का भक्त है कोई? जब माधवेंद्रपुरी ने अपना नाम पुकारा हुआ सुना तो वो सोचने लगे। उन्होंने कहा मैं हूँ माधवेंद्रपुरी नाम का वो भक्त जिसकी खुशी के लिए भगवान ने खीर का प्याला चुराया। और पुजारी ने वो खीर का प्याला किसे पहुँचा दिया? माधवेंद्रपुरी के पास। पूरे शहर में खबर फैल गई कि माधवेंद्रपुरी वो भक्त हैं जिनकी खुशी के लिए भगवान ने खीर का प्याला चुरा कर छुपा लिया था। माधवेंद्रपुरी चाहते नहीं थे कि लोग उनकी प्रशंसा करें। हम सबकी तो इच्छा ये रहती है हमारा गुणगान सब करें, आप कितने अच्छे भक्त हो, कितने अच्छे भाव है। पर जो शुद्ध भक्त हैं वो प्रशंसा नहीं चाहते, वो चाहते हैं भगवान की प्रशंसा की जाए। तो माधवेंद्रपुरी ने सोचा कि अगर मैं यहां रहूंगा तो मेरी प्रशंसा होती रहेगी, सब कहेंगे देखो मदनपुरी की खुशी के लिए भगवान ने खीर का प्याला चुराया। तो मदनपुरी रेमणा से निकलकर भागकर जगन्नाथपुरी पहुंच गए। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, भक्त को अपनी प्रशंसा की भावना नहीं रखनी चाहिए। माधवपुरी चाहते नहीं थे कि लोग कहें देखो कितने ऊंचे कोटि का भक्त है, कि इसकी खुशी के लिए भगवान ने क्या किया, भगवान ने खीर का प्याला चुराया। तो माधवपुरी जगन्नाथपुरी पहुंच गए। जगन्नाथपुरी पहुंचने पर जगन्नाथ मंदिर के अधिकारियों से चर्चा की, उन्होंने पूरी कथा सुनाई कैसे गोपाल विग्रह प्रकट हुए थे और कैसे गोपाल विग्रह की स्थापना की और कैसे गोपाल विग्रह ने सपने में उन्हें आदेश दिया। तो कैसे गोपाल विग्रह ने आदेश दिया जाओ मेले चंदन लाने के लिए। तो जगन्नाथपुरी मंदिर के अधिकारियों ने कहा हम आपका सहयोग देंगे, और उन्होंने 80 पाउंड चंदन और कैम्फर जमा करके माधवपुरी को दे दिया। क्योंकि माधवपुरी ने बहुत लंबी यात्रा करनी थी, कहाँ रेमुना से गोवर्धन तक, असल में यात्रा करनी थी जगन्नाथपुरी से गोवर्धन तक। उन दिनों में मुसलमानों का राज्य था और चुंगियों में मुसलमान अधिकारी होते थे, वो खास करके हिंदू पुजारियों को बहुत तंग करते थे, पुराना रिवाज लगता है। तो माधवपुरी ये सब चंदन को उठा रहे थे खुद 80 पाउंड, और ये सब वजन उठा के कहाँ के लिए चले, गोवर्धन के लिए चले। तो रास्ते में रुके फिर से रेमुना मंदिर में, उन्होंने सोचा कि एक रात हम यहाँ काटेंगे और फिर अगले दिन आगे बढ़ेंगे। तो माधवपुरी एक रात यमुना में काट रहे थे, तो रात को फिर से सपना आया। सपने में गोपाल विग्रह ने कहा माधवपुरी मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, मैंने तुम्हें एक बड़ा कठिन कार्य दिया था पर तुम सफल हुए। तुम्हारे क्या परीक्षा दी माधवपुरी, मेरी खुशी के लिए चंदन लेने आओ। आज के वातावरण में अगर आपको गोवर्धन से जगन्नाथपुरी पहुंचना है तो आप क्या करोगे, प्लेन जाओगे, ट्रेन जाओगे, मोटर, पैदल तो कोई नहीं जाएगा, कोई जाएगा। कीड़ा भागवत हम क्लास माधवपुरी की कथा सुनना चाहता है। तो माधवपुरी पैदल गए, भगवान ने उनकी परीक्षा ली, इतने ऊंची के भक्त थे जब भी उनकी परीक्षा ली, इतना ऐसा आदेश दिया। माधवपुरी ने भगवान को खुश करने के लिए पूरी यात्रा पैदल की। भगवान ने माधवपुरी को कहा सपने में गोपाल विग्रह, गोपाल विग्रह कौन है, जिनकी खुशी के लिए ये चले थे चंदन लाने के लिए। भगवान ने गोपाल विग्रह ने कहा मैं अब भारी हूँ, मेरी खुशी के लिए तुम चंदन लाने के लिए इतनी कठिनाई की, मेरे में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं। तुम ये चंदन यहां तक उठाने का प्रयास मत करो, मुझे अभी मेरे शरीर को ठंड लग गई है। तो यही चंदन लेकर गोपीनाथ को लगा दो, मेरे में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है। और ये चंदन इतना दूर तक मत उठाओ, क्योंकि उन दिनों में चुंगियों में सब मुसलमान लोग थे, तो भगवान चाहते नहीं थे कि माधवेंद्रपुरी को इतना कष्ट हो कि दूर तक चंदन उठा के लाना पड़े। तो भगवान ने कहा तुम यही चंदन गोपीनाथ को लगा दो, ये नहीं कि क्योंकि मेरे में गोपीनाथ में कोई अंतर है। तो अगले दिन सुबह माधवेंद्रपुरी ने पुजारियों को बुलाया और कहा ये था भगवान का सपना, और पुजारी बड़े खुश हुए, यहाँ का कोई 80 पाउंड चंदन दे दे, कहे राधा मदन मोहन की सेवा करो तो आप खुश हो जाओगे। फिर ना माधवेंद्रपुरी के निर्देशन में वह 2 महीने वहाँ रहे, रोज चंदन रगड़ के भगवान को लगा देते, और इसके माध्यम से इन चंदन यात्रा का उत्सव भी शुरू हुआ। तो माधवेंद्रपुरी थे ईश्वरपुरी के गुरुजी, और माधवेंद्रपुरी की उदाहरण से हम सीखते हैं कैसे हमारे में सेवा भावना होनी चाहिए। भगवान माधवेंद्रपुरी की खुशी के लिए, भगवान की खुशी के लिए माधवेंद्रपुरी पैदल गए गोवर्धन से कहाँ तक, जगन्नाथपुरी तक, अंदाजा लगाओ अकेले पैदल गए। आप कहोगे माधवेंद्रपुरी को भगवान ने सपने में आदेश दिया, तो हम भी सपने में आदेश लेंगे। हमको कल सपना आया था 16 माला मत करो, तो सपने की कदर जब होती है जब आप शुद्ध भक्त भी हो, नहीं तो हमें भगवान के प्रमाणिक भक्तों द्वारा आदेश स्वीकार करना चाहिए। माधवेंद्रपुरी जब वृंदावन से यमुना जा रहे थे तो रास्ते में शांतिपुर में रुके, शांतिपुर में उनका परिचय हुआ अद्वैताचार्य के साथ। भगवान के प्रकट होने से पहले उनके सनातन भक्त पहले प्रकट हो जाते हैं, जैसे अद्वैताचार्य, हरिदास ठाकुर, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, ये सब पहले प्रकट हो गए थे। अद्वैताचार्य वैसे तो महाविष्णु के अवतार हैं, और अद्वैताचार्य ने, अद्वैताचार्य हरिदास ठाकुर दिन रात केवल कृष्ण कथा करते थे, भागवत का अध्ययन, वही नाम का उच्चारण। और माधवेंद्रपुरी के पास, अद्वैताचार्य के पास एक शालिग्राम शिला थी, आज भी शांतिपुर में वो मंदिर है, आप गए उधर, यहाँ की अद्वैताचार्य जिन मूर्तियों की पूजा करते थे वो प्राप्त हैं दर्शन के लिए। अद्वैताचार्य शालिग्राम शिला की पूजा कर रहे थे चंदन और तुलसी और गंगा जल के साथ, और उनकी प्रार्थना थी कि हे भगवान, कलयुग इतना गहरा हो गया है कि आप स्वयं प्रकट होना पड़ेगा पतितों का उद्धार करने के लिए। तो अद्वैताचार्य माधवेंद्रपुरी से, अद्वैताचार्य माधवेंद्रपुरी से बड़े प्रभावित थे, और अद्वैताचार्य ने भी माधवेन्द्रपुरी से दीक्षा ग्रहण किया। तो माधवेन्द्रपुरी के कई शिष्य थे जिनमें एक शिष्य का नाम था रामचंद्रपुरी और एक का नाम था ईश्वरापुरी। तो रामचंद्रपुरी जो थे उनको वैष्णव की निंदा करने में बड़ा आनंद आता था। जब कोई सन्यासी महात्मा जगन्नाथपुरी में आते थे तो रामचंद्रपुरी उन्हें महाप्रसाद की बड़ी प्लेट ले जाता था खिलाने के लिए। तो सन्यासी कहते थे, हम तो सन्यासी हैं, इतना नहीं खाना चाहिए, हमें तो थोड़ा सा दो। अरे क्या अपराध कर रहे हो, ये तो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है, नहीं खाओगे तो अपराध हो जाएगा, खाइए। तो वो जबरदस्ती सबको खिला देता था। और फिर जब ये सन्यासी खा लेते थे तो फिर ये कहते थे, देखो किस प्रकार का सन्यास ग्रहण किया है, दुनिया को दिखाने के लिए सन्यासी हैं और खाते हैं तो गृहस्थ से भी ज़्यादा। एक दिन रामचंद्रपुरी चैतन्य महाप्रभु के कमरे में पहुंचे। बहुत गर्मी का मौसम था, लकड़ी का फर्श था, तो कई चींटियां घूम रही थी फर्श के ऊपर। तो रामचंद्रपुरी कहने लगा, लगता है हमारे सन्यासी ने कल बहुत मीठा खाया है, और मीठा क्योंकि गिर गया उसके कारण चींटियां चल रही हैं। चैतन्य महाप्रभु का उपदेश था, सन्यासी के चरित्र में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने उदाहरण दिया, एक सफेद चादर में अगर एक छोटा काला निशाना हो, दूर से दिख जाता है ना। तो महाप्रभु ने क्या किया, क्योंकि रामचंद्रपुरी ने निंदा की, सन्यासी लगता है मीठा खा रहे थे, तो रामचंद्र भगवान ने खाना बंद कर दिया। जो भोजन खाते थे उसका चौथा हिस्सा खा रहे थे। तो वो जो भगवान के सेवक थे गोविंद वगैरह बड़े क्रोधित हो गए कि रामचंद्रपुरी के कहने के कारण अब देखो महाप्रभु खाना नहीं खा रहे। तो रामचंद्रपुरी माधवेन्द्रपुरी के शिष्य थे और ईश्वरपुरी के गुरु भाई थे। तो माधवेन्द्रपुरी अपने अंतिम दिनों में ये कह रहे थे, हे भगवान अब शरीर त्यागने का समय आ गया है, पर मथुरा भगवान का प्रेम मुझे प्राप्त नहीं हुआ। ये थी कि उनकी विनम्रता। भक्त जो है, जो उत्तम कोटि के भक्त हैं, जो उत्तम कोटि के भक्त हैं वो सोचते हैं हमारे मन में एक बूंद भी भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। वो जो ढोंगी भक्त हैं वो क्या सोचते हैं, हमारे मन में प्रेम ही प्रेम है भगवान का। तो रामचंद्रपुरी माधवेन्द्रपुरी कह रहे थे, हमारे मन में कुछ भगवत प्रेम है ही नहीं, मैंने मथुरा भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं किया। तो जब रामचंद्रपुरी ने सुना तो अपने गुरु को उपदेश देने लगे, भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं हुआ तो ब्रह्मांड का चिंतन करो। ब्रह्मांड का चिंतन क्यों नहीं करते, राधा कृष्ण का चिंतन की बजाय। ब्रह्मांड का चिंतन मतलब भगवान का रूप नहीं है, निराकार है भगवान। जब माधवेन्द्रपुरी ने यह सुना कि उनका शिष्य ऐसा उपदेश दे रहा है, माधवेन्द्रपुरी ने कहा, चले जाओ मेरी नजरों से दूर, अगर तुम्हें देखते हुए मैं शरीर त्यागूंगा मेरा जीवन असफल माना जाएगा। इसकी तुलना में ईश्वरपुरी जो थे वो बड़े विनम्रता से अपने गुरु की सेवा करते थे, उनकी बुढ़ी आयु में उन्हें कंधे में उठाते थे, उनकी बुढ़ी आयु में मल और मूत्र को साफ करते थे। देखो तो ईश्वरपुरी की भक्ति से महादत्तपुरी इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने कहा तुम्हारे माध्यम से सारे विश्व में भगवान का नाम फैले, जो कि फैला कैसे, चैतन्य महाप्रभु जी और प्रभुपाद जी के माध्यम से। और रामचंद्रपुरी को उन्होंने कहा, रामचंद्रपुरी इतना अपराध कर रहा था कि भगवान ने कहा चले जाओ मेरी नजरों से दूर। श्रीमद् भागवत में प्रभुपाद जी समझाते हैं तीन प्रकार के शिष्य होते हैं। एक है जो गुरु के भाव को समझता है और गुरु के बोले बिना भाव का पालन करता है। उसी से सोचता है गुरु की इच्छा है कि मैं सोला माला करूं, विनम्रता का भाव रखूं, सबसे मित्रता का भाव प्रचार करूं। दूसरे श्रेणी का शिष्य है जो गुरु आदेश देता है, हाँ गुरु जी मैं करूँगा। और तीसरे श्रेणी का शिष्य है चाहे गुरु कुछ भी कहे करेगा वही जो करना चाहता है। तो रामचंद्रपुरी तीसरी श्रेणी के चौथी श्रेणी के पद बन गए थे। और ईश्वरपुरी क्योंकि उनमें विनम्रता का भाव था, महाप्रभु मानवेंद्रपुरी इतने प्रसन्न हुए थे कि ईश्वरपुरी ने चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से सारे विश्व में ये प्रचार किया। तो चैतन्य चरितमृत में कहा गया है जो व्यक्ति भी श्रद्धा और प्रेम से मानंदपुरी की कथा सुनेगा उसे क्या प्राप्त होगा। तो चैतन्य महाप्रभु की अनेक लीलाएं हैं और मानंदपुरी उनके परम गुरु थे। एक समय चैतन्य महाप्रभु जब छोटे थे तो पिल्लों चार पिल्ल एक पिल्ला घर में ले आए थे। उनकी माता सची माता कहने लगी हम तो ब्राह्मण हैं पिल्ले को घर में कैसे रख सकते हो। माई ने कहा अगर आप पिल्ले को घर में नहीं रहने दोगे तो मैं भी नहीं रहूँगा, मैं भी जाता हूँ। तो माता के पास कोई उपाय नहीं था पर पिल्ले को, पिल्ला समझते हो ना, पपी डॉग, उसको घर में रख रहे थे। एक दिन माई जब गंगा में गया था स्नान करने तो सची माता ने वो पिल्ले को खोल कर छोड़ दिया। सची माता की इच्छा नहीं थी पिल्ला घर में रहे। तो निमाई के मित्र ने दौड़कर कहा निमाई तुम्हारी माँ ने पिल्ले को घर से निकाल दिया है। निमाई ने सब भक्तों को कहा जाओ ढूंढो कहा है नवदे में वो पिल्ला। तो ढूंढ ढूंढ कर फिर उन्होंने देखा पिल्ला नवदेव शहर के बाजार में दो पैरों में नाच रहा था, दो पैर दो हाथों को उठाकर हरे कृष्ण का मंत्र जाप कर रहा था। तो पूरा शहर कहने लगा ये देखो निमाई की चमत्कार, पहले को भी भक्त बना दिया। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की अनेक अद्भुत लीलाएं हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं जो प्रकट हुए भक्त के रूप में उनका उनके विषय में कहा जाता है वो गुप्त अवतार थे, छुपे हुए अवतार। और उन्होंने हमें शिक्षा दी कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। ये चीज बंद भी नहीं हुई, 9 तो बज गया। तो हमें चैतन्य महाप्रभु के विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए किसके माध्यम से, चैतन्य चरणामृता के माध्यम से। और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा उपदेश चैतन्य भागवत और चैतन्य चरणामृता में इसे हमें पढ़ना चाहिए। और महाप्रभु क्या क्या आदेश है, सदा हरि नाम करो। तो चैतन्य महाप्रभु को नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं सब अवतारों में सबसे दयालु हैं, तो उनकी लीलाओं का हमें स्मरण करना चाहिए, उनके आदेश का पालन। इस प्रकार आपने जीवन को सफल बना सकोगे। हरे कृष्णा। किसका कोई प्रश्न है? आप लोग कभी नवद्वीप परिक्रमा में गए हो? नवद्वीप परिक्रमा में हम उन स्थानों में जाते हैं जहाँ की चैतन्य महाप्रभु ने अपनी देवी लीला प्रकट की थी। कोई प्रश्न नहीं तो ये गौर लीला कल भी होगी, तो आएगा वह शाम परसों भी। हाँ, चैतन्य महाप्रभु भगवान है जो प्रकट हुए थे भक्त के रूप में, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कुछ साधारण व्यक्ति के समान है। उन्होंने अनेक स्थितियों में आदमी अपनी अद्भुत लीला भी प्रकट की। हमें महाप्रभु के चरण कमलों का स्मरण करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो आप सब रेगुलरली आ रहे हो मंदिर? आप सब ये मंदिर निर्माण के कार्य में जुड़िए, इस समय आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। भगवान को असल में किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं, भगवान हम सबको मौका देते हैं उनकी सेवा में जुड़ने के लिए। उनकी सेवा में जुड़िए और ये मंदिर जल्द से जल्द समाप्त करने में सहयोग दीजिएगा। हरे कृष्ण।
थैंक यू फॉर लिसनिंग टू हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज विजिट gkgoswami.com।